الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريح المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل
أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد صلوات بڑی محمد اللہ
اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلی محمد
وعجل فرجہم بارگاہ پروردگار میں ہم سچ دریز ہیں کہ اس نے توفیق دی آپ سروران گرامی کے خدمت میں آئے اور دین کے جو خیالات ہیں اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اسی کے بارگاہ میں قبولیت کی دعا مانگتے ہیں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا پروردگار ہماری ان ختم خدمت قبول کر اور جو باتیں بتائی گئی ہیں ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما انشاءاللہ میں یہ گیارہویں ہماری تقریر ہے کل انشاءاللہ آپ کی اجازت سے جا رہا ہوں انشاءاللہ پھر اللہ نے حیات رکھے رزق رکھا ہے تو آپ سے ملاقات ہوا کرے گا گفتگو کا جو آغاز ہمارا جو میں تھیم لے کر آیا تھا اس کو یہی تھا کہ قرآن عدالت کی گفتگو کرتا ہے اور قرآن کا جو سسٹم ہے یونیک ہے جس کو ہم لوگ بھلا چکے ہیں وہ سسٹم ہے لیقوم الناس بالقسط وہ ہے پبلک مومنٹ بنانا اب انبیاء کے انقلابات کو دیکھیے انہوں نے انڈیویجول انقلاب نہیں لایا ہے بلکہ ایک پوری پبلک مومنٹ بنائی ہے اب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات دیکھیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی حیات دیکھیے اور میں ذرا سا ٹائم لوں گا مگر امید ہے کہ ہم لوگ کنکلوژن میں جو جا رہے ہیں کوئی نتیجہ دیکھیں گے حضرت ابراہیم کے لیے قرآن کہتا ہے کہ فجعلہ جذاذاً حضرت ابراہیم نے بت کو بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا الا کبیر لہم ایک بڑے کو چھوڑ دیا قرآن پڑھتے ہیں جس سے سنتے ہیں کئی بتوں سوال یہ ہے کہ سرکار نے بتوں کو کیوں نہیں توڑا جبکہ بہت ہی اچھی طرح بہت ہی اچھے سمجھیں اور حسن یہ اعتراض حضرت ابو طالب بھی ہوتا خاندان رسالت پہ بھی ہوتا ہم تو کہتے ہیں کہ چلیے بھائی حضرت ابو طالب نے نہیں کیا عبد المطلب نے نہیں کیا خود سرکار 40 سال رہے کیوں نہیں توڑا خانہ کعبہ کے اندر بت تھے کیوں نہیں توڑا چلیے نبوت مل گئی اب تو توڑیے تب بھی نہیں توڑا تو دیکھیے بہت اچھی طرح سے ہندوستان میں تھوڑے سے سایہ سیاست مدار اگر ہنگامہ کرنا ہے تو کیسے کوئی نہ کوئی ایسا فساد کر دیتے ہیں کہ مندر کا کوئی نہ کوئی بت کے ساتھ کوئی ایسی گستاخی کر دی ہنگامہ ہو جاتا ہے ہزاروں گلے کٹ جاتے ہیں تو آج کے ہندوستان میں جو ہے حضرت ابراہیم کی سنت چلنے والی نہیں ہے تو معلوم ہے کہ حضرت سرکار رسالت مآب نے بتوں کو توڑا کیوں نہیں یہ بہت بہت اہم ہے بس سمجھنے کی چیز اس کو میں دوسرے رخ پہ لے جا کر کے سمجھاؤں امید ہے کہ ہم لوگ ذرا سا اس سے قریب ہو جائیں وجعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقبحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون سورة ياسين کی آیت उनके गलों में, उनके उनके गले में क्या है, जंजीरें हैं। कहां तक आ गई हैं? ठोड़ियों तक आ गई हैं। फूल के हार हिंदुस्तान में, खुसन हमारे साउथ में, चेन्नई मद्रास से लेकर के मैसूर वगैरह स्टेट में दूल्हे को सजा देते हैं। फूल के हार इतने डालते हैं कि बेचारे की गर्दन अल्लाह ही हाफिज है, मगर है भाई शादी जब तक कि फूल के हार ना, हार भी डाल देते हैं तो इंसान की गर्दन अकड़ जाती है। तो जो बता देते हैं, फितरत कहती है ना झुक, वजन कहता है झुक, तो क्या होता है, अकड़ जाता है। तो जब ठूड़ियों तक आ जाती हैं जंजीरें, तो ना सामने देख सकता है ना पीछे देख सकता है ना दाने देख सकता है। इसलिए ये फूल के हार है, अगर इसको जंजीरों से बदल दीजिए तो क्या हश्र होगा। जंजीरें यहाँ तक हैं, कुरान की मिसाल है, मेरी मिसाल नहीं है। वजअलना फी अअनाकहिम, अअना कहते हैं गर्दन को, अगला आलम कहते हैं जंजीरों को, कहाँ तक, पहिया इलल अदकान, ठूड़ियों तक, चिन तक आ गई हैं। यहाँ तक आ गई हैं तो ना सामने देख सकते हैं, ये कौन सी जंजीरों की बात कर रहा है खुदा, अरे लिटरल कोई जंजीरें हैं तो मालूम हो कोई ना कोई चीज और है। मिसाल दूंगा तो बात और वाजे हो जाएगी। आप यहाँ की, जो आप अमेरिका आए हैं, हमारे दो फराइज हैं। अमेरिका की असल तारीख पढ़ना आपका फरीजा है। सीरू फिल फंदुरु कई फकाना आकिबतुल मुकद्दमीन, जमीन के सैर करो, जो आकिबत झुटलाने वालों की क्या हुई है। कहा जाता है कि अमेरिका हैज बीन डिस्कवर्ड, अब ये मुझे उसमें जाना नहीं है, फिर यहाँ इसके बाद फिर पूरे जो है सीक्रेट सर्विस तैयार हो जाएगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद और कीजिए बहुत अच्छी तरह से। इस अमेरिका की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, रेड इंडियंस की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ये लोग पहले से मौजूद थे और यहाँ पे इन्वेट किया गया, पर मुझे वो पढ़ना नहीं। मगर यहाँ पर जरूरत पड़ी मैन पावर की, अफ्रीका से लोगों को लाया गया। अब जो स्लेवरी की हिस्ट्री पढ़ी है, जो जंजीरों को बांध करके बेचारों को छोटी छोटी कश्तियों में उनको मारते जाते थे, बेचारे रोते जाते थे, इसलिए रोते जाते थे कि उन्हें पता नहीं कि था कि वो डेस्टिनेशन कहाँ जा रहे हैं। तवज्जो के तारे बहुत अच्छी तरह से मिसाल को अच्छी तरह से समझिए, और तारीफ भी है और मिसाल को भी इसको हजम करने की कोशिश कीजिए। वो मेरी तरह बोलने लगा, जब बोलने लगता छोड़ता नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद सल्लल्लाहु। देखिए और अच्छी तरह से ये स्लेवरी की तारीख बताती है कि जो भी आता था रोता था वहां पर, इसलिए वो कैदी बन गया, उसका जिस्म कैदी था लेकिन उसकी अकल आजाद थी। बहुत अच्छी तरह से रही है, उनकी बॉडी जो थी कैद थी, मगर बॉडी के साथ उनके माइंड जो था आजाद था। इसीलिए वो कह रहे थे कि मुझे ये जंजीरें नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, सिस्टम को इतना खूबसूरत कर दिया, अब उनको टाइट रोप में बांधने की जरूरत नहीं है। हर अमेरिकन एम्बेसी के सामने लाइन लगती है चेन में, हमने भी किया, हमने भी जनता। तो मालूम हुआ ये जो जंजीरें हैं उस जंजीर से बदतर हैं, इसलिए कि वो जंजीर में इंसान रो रहा था, ये जंजीर से खुशी खुशी आ रहा है, तो ये कैद उस कैद से बदतर है। इस कैद की बात खुदा कह रहा है कि वजअलना फी अअनाकहिम अग्लालन फहिया इला अदकान फहुम मुकमहून, उनकी गर्दनों पर हमने जंजीरें डाल दी हैं, ये ठूठियों तक आ गई हैं, और वो ना सामने देख सकते हैं ना पीछे देख सकते हैं। इसलिए ये जंजीरें गुलामी की जंजीरें हैं, जब ये आ जाती हैं तो इंसान मुकय्यद हो जाता है। सामने के माने ना वो फ्यूचर देख सकता, पास के माने ना उसके पूछे पीछे जो गुजरे हुए हालात को देख सकता, राइट यानी उन्हें अपने अच्छे डिसीजन को नहीं ले सकता, लेफ्ट यानी अपनी जरूरतों को पूरे नहीं कर सकता। ये कुरान है मेरा साथ आप लोग। ये जंजीर इसका तोड़ना जो है फरीजा है पैगंबरों का, तवज्जो बता ले। तो सरकार रिसालत माव ने बुतों को तोड़ा क्यों नहीं, 40 साल रहे मक्के में, पत्थर मारा गया, कूड़ा डाला गया, कचरा डाला गया, गार्बेज डाला गया, मुस्कुराते रहे, कोई रिएक्शन नहीं, और यहां तक के नबूवत का ऐलान भी कर दिया, प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया, हिजरत करनी पड़ी, वापस हिजरत करके फतेह मक्का 8 हिजरी में हुआ है या 9 हिजरी में, और उस हिजरी के बाद पहला और आखिरी हज किया। उस फतेह मक्का के बाद खुद मक्के वालों को साथ लेकर के बुत तोड़े गए। मेरा मजमा समझने की कोशिश करें, अगर पहले दिन बुत तोड़ते तो कोई साथ देने वाला नहीं था, तो बिल्किस्त यानी लोगों में एक ऐसा फिक्री शऊर बेदार कर दिया जाए वो अकली बुतों को भी तोड़ सके और जहनी बुतों को भी तोड़ सके। चैलेंज है, ये चैलेंज यही है कि आज के कैदी काहे के कैदी हैं हम लोग, या डॉलर के कैदी हैं, या बिल्ली के कैदी हैं, या बीवी के कैदी हैं, या सास के कैदी हैं, या बहू के कैदी हैं, किसके कैदी हैं हम लोग? हमारे पास जंजीरवाद है और हम ये समझ रहे हैं आजाद हैं। मौला अमीर मोमिन का एक कॉल लेके जाइए, बहुत खूबसूरत कॉल है, ला तकुन अब्दा गैरक وقد جعلك الله حرا، کسی غیر کا تو غلام نہ بن، خدا نے تجھے آزاد کر دیا۔
سبحان اللہ،
توجہ کا طالب ہوں، don't be slave of others، اللہ has created you free، تو آپ جا کر کے تکیے پہ سر لگائیے، کیا میں فری ہوں؟ میں بھی ساتھ ہوں آپ کے، لیکن جب میں بیان کر رہا ہوں جس کے معنی کہ میں ہٹ گیا ہوں نا، میں بھی کینیڈا میں رہتا 33 ایئرز سے قیدی ہوں اور سگنیچر کے کر کے آیا ہوں، میرے کو चेनी और गले में है हमारे पास जंजीरें आ गई हैं। इन जंजीरों को किस तरह से निकाला जाए एक चैलेंज है। कुरान ये कहता है कि ये काम पैगंबरों का है, वो मोमेंट को मैस मोमेंट बनाते हैं। अब इसके ये इमाम वो सरकार की इनकलाब था, उसके बाद आइए हमारे जमाने में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का इनकलाब। इसमें क्या था, कोई आप गन लिया आपने जैसे तालिबान ने लिया है, अलकायदा ने लिया है, ना तालिबान का गन है ना अलकायदा का, क्या था लिया? तारीख कहती है कि आप जानते हैं कि फ्रांस में बैठे हुए थे 6 महीने तक, रिपोर्टर्स आए का ये वर्ल्ड जो है ग्लोब 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है, एक का नाम है ईस्ट ब्लॉक, एक का नाम है वेस्ट ब्लॉक। Unless and otherwise you are not one of the blocks, you will not be surviving, you cannot survive. यानी आपको या इस ब्लॉक में जाना पड़ेगा या वेस्ट ब्लॉक में जाना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट इस्लाम इज द बेस्ट, आप कैसे सर्वाइव करेंगे? खुमैनी को जब रिपोर्ट ने सवाल किया तो आगा ने लपक करके तस्बीह और सजदगा उठाया कि ये 2 कुव्वतों के बाद मुझे किसी और चीज सिंसियर एफर्ट देखिए उस शख्स की, उसने गन नहीं उठाया, उसने कोई ये नहीं कहा कि तुम मैदान में आओ कत्ल करो ना, कुछ नहीं उसने कहा। सिर्फ अल्लाह, एक छोटा सा वाक्य बताता हूं, आगा फ्रांस में है और उन्होंने चाल चली किसी तरह से इनकलाब के लिए, बेहतर है कि शाह ईरान को भेज दिया जाए, भेज दिया गया, शाह बख्तियार आ गया, आगा जाना चाहते थे, रोक रहा था, आगा ने एक दिन तय किया हम आ रहे हैं, पहुंचे वहां पर। अब यहां से प्लान गया, अब तो सरकार पहुंचे, इमाम खुमैनी पहुंच गए तहरान में, स्कूल के पहलू में रहते थे, अब पूरा शिकार आ गया, इनको 100 और ऐसे मौलवियों को मार दो, 100-200 साल के लिए पूरी तहरीक खत्म हो जाएगी। 3 बजे मार्शल लॉ का हुक्म दिया गया कि आज 3 बजे जो है जो भी तहरान में बाहर निकलेगा उसके गले काट दिए जाएंगे, उसको गोली से मार दिया जाएगा। जोहर की नमाज खत्म हुई, सब लोग परेशान थे कि हुक्म आ गया है बड़े सरकार की तरफ से, क्या होगा? तो आगा ने नमाज पढ़ने के बाद अपने एडवाइजरी से सवाल किया, बताओ क्या करना चाहिए। सब लोगों ने राय दी, आगा ने एक मरतबा अपना फतवा जारी किया, हमारे पास मराजे में और मौलाना मुंतशी फरमाए हमारे पास अहकाम, वही कहें कि वीटो पावर के माने अगर कभी मर्जा ये कह दे कि ये मेरा हुक्म है, तमाम मराजे पर उस पर अमल करना वाजिब है, शरीर तौर पर हमारे पास यह वीटो पावर है। आगा ने हुक्म दिया, मेरा हुक्म है कि कोई तहरानी बच्चा घर में रहना 3 बजे के बाद हराम है। 3 बजे वहां पर हुक्म है कि 3 बजे जो बाहर निकलेगा उसको मार दो। आगा ने हुक्म दिया कि जो 3 बजे के अंदर घर में रहेगा उसको कुछ भी नहीं करना है, बंदो किसी के पास नहीं था, बाहर निकलना अल्लाह अकबर, छतों पे छोड़ो अल्लाह, कुछ न मत बोलो, सिर्फ अल्लाह ऊपर कहते रहो। تاریخ کہتی ہے کہ جنگل کی آنکھ یہاں ہمارے سامنے میرے سامنے جو واقعہ ہوا جنگل کی آنکھ کی طرح پورے تہران میں خبر پہنچی. آقا نے یہ حکم دیا ہے 3 بجے کوئی گھر میں نہیں رہ سکتا. سب لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے گئے, یہاں تک کہ شاہپور بختیار کے پیلس تک پہنچے. ابھی جو ہجوم کو دیکھا تو اس نے اڑ کر کے فرار اختیار کیا. اگر وہ ٹرننگ پوائنٹ نہ ہوتا تو آج یہ انقلاب ہی نہ ہوتا. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ میں لانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ایک کا ہاتھ ہے, مگر میس پروڈکشن ہے, یعنی پوری میسز نے اس بات کو قبول کیا ہے. تو کیسے کیا؟ ایک بات اچھی طرح سے یاد کیجیے, میں نے مجلسوں کے دوران کہا ہے, اگر آپ کی بات بیٹا نہیں سنتا, آپ کی بات بیٹی نہیں سنتی, اگر آپ کی بات بیوی نہیں سنتی, آپ خدا کی سن لیجئے, آپ کی بات بیٹا بھی سن لے گا, بیوی بھی سن لے گی. تو جو شخص اپنے وجود میں خدا کی حکومت لا لے گا تو اپنے کنٹری میں بھی لا سکے. صلوات پر محمد. بہت اچھی طرح سے دیکھیے, یہ جو لے یقوم الناس کہہ رہا خدا قرآن میں کہ میس مومنٹ بنایا جائے, وہ میس مومنٹ کیا تھا؟ پورے تقاریر اٹھا کر کے دیکھیے, امام خمینی کی تقریروں میں نماز پڑھو نہیں ہے کہیں بھی, روزہ رکھو کہیں نہیں ہے, حج کرو کہیں نہیں ہے. تو کیا تھا وہ میس مومنٹ؟ کہتے ہیں تمہارے گردنوں میں زنجیریں کس کی ہیں؟ توجہ کا طالب ہوں. تمہارا دشمن کون ہے؟ اگر پلیئر میں بھی کھیلتا ہوں, کبھی کبھی کھیلتا تھا, اب تو ذرا سا بوڑھے ہو گئے کھیلا نہیں ہوتا, لیکن ٹینس جب کھیلتے ہیں تو اگر آپ اکیلے ہیں تو کتنی مرتبہ دیوار کو ماریں گے؟ تو جب تک اپوننٹ نہیں ہوگا آپ کو لطف نہیں آئے گا. اپوننٹ بھی آپ کے لیول کا ہونا چاہیے. شاید خدا نے اسی لیے شیطان کو مہلت دی ہے تاکہ انسان کی اندرونی صلاحیتیں ابھر جائیں. تو آقا نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو, آقا نے کہا تمہارا دشمن کون ہے؟ دیکھو جیسے ہی دشمن کو سمجھ گیا نوجوان, جو نوجوان شراب کی بوتل سے مدہوش ہوتا تھا وہ شراب شہادت پینے کے لیے تیار. یہ انقلاب ہے, یہ پبلک مومنٹ ہے, یہ میس مومنٹ ہے, یہ مومنٹ کی طرف پیغمبروں نے. تو انقلاب, اب آئے انقلاب کیسا ہوا؟ ہم جب تھوڑا سا کام کرتے ہیں مولانا سبب کون کیا یہ سب؟ یہ سب جو دیکھ رہے ہیں تم, یہ میں نہ ہوتا تھا یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا یار. میں تو مر چکا ہوں, میری پوری 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 پوری, پوری جوانی یہاں پر ختم ہو گئی ہے. میں آگا کیا کہتے ہیں, ان انقلابی کے پیدا شد ان ایران, ان تحولی کے پیدا شد, ان گرائش با اسلام کے پیدا شد از طرف خدا بود. یہ جو انقلاب آیا یہ لوگوں میں محبت پیدا ہوئی, میرا کام نہیں تھا, اللہ
بے شک.
تو یہ ہے دین, یہ کہ کریڈٹ لینے کی کہیں شوق ہی نہیں ہے. ہم لوگ ہر جگہ جاتے ہیں, ہار مل جائے یا کرسی مل جائے یا ٹیبل مل جائے یا کوئی اسٹیج ملے, کوئی بولے نعرہ حیدری لگائے اور نام لے حجت الاسلام والمسلمین, علامہ صاحب قبلہ کب آئے ہیں, وہ اس طرح کی باتوں میں مقید ہی نہیں تھے. جو نہیں رہے گا تو یاد رکھ لیجیے, جو آزاد نہیں ہے وہ دوسرے کو آزاد نہیں کر سکتا. خود آزاد ہونا ہے تو وہ دوسرے کو آزاد کرتا ہے. اسی لیے ہیں میرے ساتھ نہیں ہیں, آج 2 گھنٹے کی مجلس ہے. ایک صلوات پڑھیے مولانا. مولا کے معنی 24 مینگس لفظ مولا کے, مجھے 24 کروں گا سمجھ ہو جائے گا. صرف ایک معنی جس کو سعدی شیرازی نہیں بلکہ معافی چاہتا ہوں, وہ ہے مولانا رومی نے دفتر شیشوں میں اس کے معنی بتائے. ایک قصہ نقل کیا ہوں. قصہ یہ ہے کہ کورٹ میں جج بیٹھا ہوا تھا, ایک کیس چل رہا تھا اور محسوس کیا کہ یہ اس سے بچ کے بھی نہیں نکلے گی. اس نے عورت برا پلان بنا دیا, میری بہن اچھی طرح سے سنے. کہتے ہیں کہ جب مجبا چھٹ گیا اس عورت سے, جج نے کہا کہ یو ہیو ٹو اسٹے ہیئر, اور سمجھ گئے کیا اب یہ میری گرفتاری ہے. جب سب چلے گئے فغلقت الابواب, دروازے بند ہوئے, اب عورت نے محسوس کیا کہ اب اس کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. اس نے یہ دیکھا کہ بڑا سا صندوق ہے, اس سے کہا آپ اندر تشریف لے جائیے, میں بھی آدمی ہوں. زمانے میں جو صندوق ہوا کرتے تھے بالکل ایک آدمی اس میں سو سکتا تھا, تو صندوق کے اندر جائیے میں بھی آؤں گی. وہ جیسے ہی جج اندر گیا بند کر کے لاک کر دیا. हम्माल उसे कहा कि उठा चलो इस बादशाह के पास। रास्ते में हम्माल ये जो क्या रियर जो क्या उठा कर ले जा रहे थे उनसे गिड़गिड़ा रहा था वो जज कि मेरी भलत हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, यार कम से कम मुझे तो छुड़ा दो। जब उसने बहुत गिड़गिड़ाया तो उनके दिल में रहम आ गया, उन्होंने वजीर से चाबी ला, वजीर को बुलाया, चाबी ला करके खुलवाया। यहां पर गुरेज करते हैं मौलाना रूमी के मौला के माने हैं मुअत्तक और मुअत्तक। मुअत्तक के माने आजाद शुदा, मुअत्तक के माने आजाद करने वाला, यानी जब तक के आजाद शुदा नहीं है वो आजाद दूसरे को नहीं कर सकेगा। वजीर चूंकि आजाद था उसने कबूल खोला, आजाद कर दिया। उसके बाद कहते हैं किस मौला उनके आजादत कुनत जान सबक पैगंबर है माँ बा इश्तिहाद नाम खुद वो उन अली मौला नेहाद गुफ्त हर के रामन हस मौला व दूस्त इब्ने अम्मे मन अली मौला ये उस्त। इसीलिए रसूलुल्लाह ने अपने आप को भी मौला कहा मन कुंतो मौला हूँ फहादा अली मौला, यानी रसूलुल्लाह भी मुअत्तक हैं, रसूलुल्लाह भी मुअत्तक हैं, खुद आजाद हैं, आजाद करने की सलाहियत रखती हैं। मैं मौला हूं और अली भी आजाद हो रहा है, आजाद करने की सलाहियत रखता है। किस्त मौला उनके आजादत कुनत बंद रिक्कियत जिफायत दरकनत। कौन है मौला जो तेरी जंजीरों को काट दे और तेरे पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां निकाल दे, यानी बेड़ियों को निकालने वाले का नाम है मौला। तो जब तालिब हूं यानी इंसान की ये जो जंजीरें हैं, अब यहां से उठती है रमजान में क्या आप लोग पढ़ते हैं परवरदिगार आजाद कर दे हमें जहन्नम से, पढ़ते ना फका का रगबती मिनन्ना परवरदिगार आजाद कर दे मेरे गर्दन को आग से, क्या जहन्नम की आग से है? जी नहीं, इस दुनिया में जन्नत है, इस दुनिया में जहन्नम है। यहां से हम जन्नत ले जाते हैं, यहां से हम जहन्नम ले जाते हैं। यहां अगर आप रमजान में आजाद हो गए तो आपको आजादी है जहन्नम से, अगर यहां नहीं हुए तो वहां आजादी नहीं होने वाली है। यानी मैं इस दुनिया में अपने वजूद में वो सुकून महसूस कर रहा हूं कि नहीं है, अगर वो जन्नत महसूस कर रहा हूं तो मेरे पास जन्नत है, हसीद है, हासिद है, जल रहा है, तो यहां भी जलेगा वहां भी जलेगा। तो जहन्नम यहीं से है, जन्नत भी यहीं से है। हम ये समझ रहे हैं कि जहन्नम मरने के बाद है, जन्नत भी मरने के बाद है, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे साथ रहिए, सवाल बढ़िए मोहम्मद वाले तो नहीं गया आपको देखिए बहुत अच्छी तरह तो ले पैगंबरों का क्या मिशन था, पैगंबरों का मिशन था कि मैस मोमेंट बनाया जाए। इंडिविजुअल रिलीजन का नाम नहीं है कि एक आदमी को बना दिया मुसलमान, जो भी मौलवी आता मौलाना जरा तबलीगी मजलिस पढ़ी। अरे भाई तबलीगी मजलिस क्या है, नमाज के लिए बोलिए रोज। अल्लाह क्या बदबख्त जमाना आया, मुसलमानों से कहना पड़ रहा कि नमाज पढ़े। अरे भाई क्या बदबख्त जमाना है, मुसलमान को कहना चाहिए था कि इस्लाम की नमाज की खूबसूरती क्या है। क्या बदबख्त जमाना है कि औरतों से कहना पड़ा चादर पड़ो पहनो, हालांकि ये चाहो औरतें ये कहना चाहिए कि इसकी लज्जत क्या है, इसकी आजादी क्या है हम जानते हैं, ये समझाना चाहिए इसकी फिलोसफी को दूसरे को। वाशिंगटन में एक बहन मुसलमान हुई, उसे रिपोर्टर जरा सा साइकेट्रिकली पूछे तो पूरी पूरी गोरी थी यहां तक। She said, I found myself. Hey, what do you mean by you find myself? जब पहले मुझे लोग मेरे जिस्म को देखते थे कहते थे I love you. You are so beautiful. You are so cute. जी मैंने इस जिस्म को छुपा दिया, अब अगर किसी को मुझसे मोहब्बत करना है मेरे किरदार से रोशना सा। मुझे बताइए कि आप आजाद हैं या कैदी हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले तो ये हमारा चैलेंज अदालत को घर बनाना सारी। देखिए नौजवान बच्चों को समझाइए और अभी इस तरह से समझिए, दुनिया में दो एनर्जीज हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी। जो शख्स पॉजिटिव एनर्जी को ज्यादा अपनाएगा वो बुलंद होता जाता है। पॉजिटिव एनर्जी को अपनाने के लिए नेगेटिव एनर्जी को रिपेल करना जरूरी है। जब तक रिपेल नहीं करेंगे पॉजिटिव एनर्जी आपके पास मिलती नहीं। ये नमाज में हम लोग कहते हैं सिरात लदीना अनअमत अलैहिम, पॉजिटिव एनर्जी है। क्या रिपेल क्या कर रहा है, गैरिल मग़दूबे अलैहिम वलद्दाल्लीन, हमें इनके रास्ते पे ना चला जो मग़दूब वज़ाल्लीन है। एक साहब ने मुझसे, ब्रदरान अहले सुन्नत में से थे, अब कुरान से साबित कर दीजिए या अली या मोहम्मद ये सब सही है, और यहाँ पर आपके डैलस में रसूलुल्लाह की विलादत का मिलादुन्नबी थी, उन्होंने कहा कि आज के जश्न में आप साबित कर दीजिए। मैं साफ, उन्होंने कहा मैं सलफी हूँ, मैं वहाबी हूँ, आज अकीदे को बदल दूंगा। मैंने इसलिए सूरह को पढ़ा, मैंने कहा चलिए अभी आपके पास सूरह पढ़ने का हुक्म है, नमाज बगैर सूरह अलहम्द के नहीं हो सकती, एक ही नमाज है जिसमें सूरह अलहम्द नहीं है। वो पढ़ने से लोग डरते हैं जी, मैयत की नमाज है ना जिसमें सूरह नहीं उभरता, मगर हर सुन्नत नमाज में, हर वाजिब नमाज में ये सूरह है, मौजूद है ना भाई, ये सूरह मुसलमानों के पास पूरा सूरह पढ़ना है। ब्रदरान अहले सुन्नत के यहाँ भी, शियों के पास भी, दूसरे सूरह के लिए सुन्नी भाइयों के पास है कि एक आयत पढ़ाई जा सकती है, मगर पहले सूरह हम साथ हैं दोनों, पूरा सूरह। मैंने कहा किसकी बात और हो रही है, अल्लाह की। किसका काम होना चाहिए, अल्लाह का। किसका सजदा होना चाहिए, अल्लाह का। किसके लिए रुकू होना चाहिए, अल्लाह के लिए। ठीक है, चलिए पढ़िए, शुरू कीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इब्तदा अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अबिगिन इन द नेम ऑफ अल्लाह द ग्रेशियस द मर्सीफुल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ है उसके लिए जो आलमीन का परवरदिगार है। अर्रहमानिर्रहीम, बहुत रहमान और रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। यहां पे सूरह खत्म हो जाना चाहिए था, इसलिए इबादत का मसला था। मुझे कहता भी सूरह खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए कि इससे कोई शरीक नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मैं और वो कोई और होना नहीं चाहिए। इसमें दूसरा आया तो शिर्क हुआ कि नहीं हुआ, मगर खुदा ने कहा यहां सूरह खत्म नहीं होगा। कहो एहदना सिरातल मुस्तकीम, दुआ करो परवरदिगार सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। यहां पे कम से कम खत्म कर दे परवरदिगार, दुआ खत्म हो गई ना। कहा सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता प्यार था दोस्त, नमाज में उन लोगों को याद करना शिर्क नहीं है। तो इन लोग कौन है, यही या मोहम्मद है, यही आली है। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। सामने की बात है ना कि हर नमाज में सलावत क्यों हम लोग झगड़ा करते हैं, नहीं जरूरत नहीं है। सिरात लदीना अनअमत अलैहिम तवल्ला हो गया, यही भी रुकते नहीं, फिर गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ऐसा तबर्रा करो सब लोग साथ करो, बजाय इसके कि कोई अलग हट जाए, नहीं तुम भी करो यार, गैरिल मग़दूबि करो वलद्दालीन, तुम लोग को भी करना पड़ेगा। खुदा ने ऐसा लाके खड़ा कर दिया, तो ये क्या नेगेटिव एनर्जी। देखिए मैं किसान हूँ, हमारे घर में जमीनात हैं, हमारे वाले जमीनात जमींदारी करते थे, आलिम थे, मगर उन्होंने एक पाई पाव से नहीं ली, जमींदारी करके ली। हम लोग ये देखते थे कि जब कभी कोई इसी चीज़ को बरना सला टिमाट करके पूरा खेत बनाए, बास वक्त घास फूस आ जाती पहलू में, वो घास का तोड़ना जरूरी है, वरना उसकी पूरी एनर्जी जो है वो घास खा जाएगा। इसको कहते हैं फीड एंड वीड। तो फीड भी करना है, वीड भी करना है, जब तक वीड आउट नहीं होगा फीडिंग काम आने वाली नहीं है। इस्लाम भी एक दरख्त है, इसको फीड भी करना है, वीड आउट भी। जरा पढ़िए वहां पहलू में जो घास फूस उग गया है उसको नहीं निकालेंगे, ये दरख्त में ताकत है। वो भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, हमारे लाए क्यों परेशान है यार। देखिए दीने हक के मुकाबले में क्या है, दीने बातें, बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ रहिए। हाथ और बादल माना भाई, हाथ को कर लीजिए प्लस, बादल को कर लीजिए माइनस, प्लस इनटू प्लस क्या होता है, हाथ को हाथ से मिलाएंगे तो क्या होगा, हाथ ही होगा, अली माय हाथ वन हाथ, तो इससे कोई अलग नहीं कर सकता। बादल हो गया माइनस, माइनस इनटू माइनस फिर बादल ही बनेगा, प्लस वन में माइनस इनटू माइनस प्लस, यानी बादल को बादल से मिलाएंगे तो फिर बादल ही मिलेगा। तो यह हो गया, हाथ को हाथ से मिला सकते हैं। अब आइए दो शक्लें और हैं, बातिल को हाथ से मिलाइए फिर भी माइनस है, हदीम आदत सिर्फ एक ही हक है, वो यह हक है कि हक को हक से मिलाया जा सकता है, बातिल को मिलाया नहीं जा सकता। कुरान साहब ये कह रहा है कि यह हक है, वला तलबसुल हक बिल बातिल। मौलाना ये भी मैं उतना गौड़ा मुसलमान नहीं हूं, मैं आप जैसा नहीं हूं, मौलवी के लिए मुसलमान इस्लाम अलग है, आपके लिए अलग है। मैं करता हूं थोड़ा जरा ये भी हो जाता है, नहीं होता भी इस्लाम के रैया ये या उधर, ये नहीं है क्या आप किसी और के लिए रिलीजन कुछ और करें। हम जरा सा वो इससे नहीं है मौलाना, जरा सा हम कभी कभी आप बेहद शर्मिंदा है, आपके सामने कहना पड़ रहा है, बाजवत हम जो है गलती कर जा, अल्लाह अकबर जुरत है भाई, ऐसे नहीं कर सकते आप। इस्लाम ये कहता है या पूरे हक पे आ जाओ या पूरे बातिल पे, हक में बातिल मिल ही नहीं सकता। ला तलबसुल हक बिल बातिल, हक को बातिल से मिक्स अप मत करो, ये मिंगल नहीं होता है, हक हक है बातिल बातिल है। तो आज हम कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मुनाजरा पढ़ने की या एक फुला पे लाना पड़े, बहुत आजकल एक शुरू हो चुका है, जरूरत नहीं है। आज देखो दो इस्लाम पेश हो रहे हैं, एक हक का इस्लाम पेश हो रहा है, एक बातिल का इस्लाम पेश हो रहा है। बातिल का इस्लाम वो है जो बातिल की गोद में बैठा हुआ है, हक का इस्लाम वो है अकेला है जो ट्रेन पर सवार पड़ी है। मोहम्मद अल्लाह ये है भाई, आपके सामने आ गई बात, इसके बाद और क्या चाहिए। अब ये 11 दिन की मजलिसों का निचोड़ है आपके पास पेश कर रहा हूं मैं, क्याम करना है लोगों को। तो हुजूर भैया ये शबे जुम्मा या शबे शहादत, मौला की शहादत हो गई तो, इमाम हसन की शहादत हो गई तो, रोजे आशूर का मजमा सरवर नजर की माता ने, यह सवाल है मेरे पास भी, आप लोग सवाल करें, और ये सवाल मेरे लिए बहुत मुश्किल है मां सवाल, और इसका नतीजा तो मुझे लेना है। मैं भी तो ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, टोटो में जानते हैं मैं भी ऑर्गेनाइजेशन हम चलाते हैं, हमारे चैलेंज क्या है, हम क्या करते हैं जो सामने आता है उसको ही डांटते हैं, हर मोर भी क्या करते हैं किसको डांटते हैं, बेचारा आ गए यार उसमें क्यों डांटते हैं यार, उसको तो छोड़ो उसको बुलाओ जब नहीं आया है। तो पूर्वों का हम सबका फरीजा है जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए कुछ दवा पेश करें, उनके लिए एक सिस्टम पैदा करें कि ये जो नहीं इश्क है ये क्यों इश्क नहीं है, ये क्यों अगर दीन की बेदारी उनमें क्यों पैदा नहीं हो रही है। इसीलिए इस्लाम ने एक चेन ऑफ रिएक्शन, एक छोटा सा छोटी सी मिसाल दूंगा, उसके बाद आप सहमत मान करो सवाल पढ़ी देखिए। बिजनेस माइंडेड मैं हूं, बिजनेस कर चुका हूं, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह से बिजनेस करें इंशाल्लाह। बिजनेस में सबसे अहम मसला जो है खतरनाक मसला है, प्रोडक्ट को बाजार में चलाना है। बस ये देखिए मैंने एक प्रोडक्ट बनाया इसको बाजार में चलाना है, कैसे चलाऊं, द बेस्ट प्रोडक्ट वो है जो वर्ड ऑफ माउथ से फैले। तो बच्चों बता रहे आपने प्रोडक्ट बनाया बीवी के हाथ में दिया, मसलन देखो भाई मैंने ये जो आज जितने भी प्रॉब्लम हैं ये सर के बाल गिर रहे हैं उसकी वजह ये है कि बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं इसमें, इस शैम्पू में मैंने ऐसा शैम्पू बनाया है जिसमें केमिकल बिल्कुल लीस हैं, इसको तुम इस्तेमाल करो। सब माने ये बीवी माना जो है बहुत मुश्किल काम है, आसान मसला नहीं है। अगर बीवी आपकी वो प्रोडक्ट को चला सकी तो इसके बाद वो बच्चे भी उस प्रोडक्ट को चला सकेंगे, महिला भी चला सकेगा। सरकार को भी खुदा ने ये हुक्म दिया वह अंदर अशीरतक अकरबीन, इस्लाम भी एक प्रोडक्ट है तो इसको बाहर ना चला पहले घर में चला। तो जो कहता है इसको अगर घर वाले कबूल कर लें, अगर घर वाले कबूल करने वाले कौन थे, ये वो औरत थी जो मलेखतुल अरब थी, सबसे ज्यादा दौलतमंद थी, उसने सरेंडर होकर बताया इस प्रोडक्ट को मेरी तमाम दौलत दे करके खरीदूंगी। यहां पर एक चीज को मैं बताना चाहता हूं, और अनफॉर्चुनेट केस यह है कि हम लोग ना है, मैंने दरमियान मदरस बताया था इन शैतान अदुवुल लकुम फत्तखिदूहु अदुवा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है तुम उसको दुश्मन समझो। उसने कहा मैं आऊंगा कहां नहीं कहा नमाज में भटकाऊंगा, दूसरे में भटकाऊंगा, सिरात में भटकाऊंगा। सिरात क्या है? पगडंडी नहीं है, हाईवे नहीं है, फ्री वे नहीं है। सिरात क्या है? सिरात है नहनु सिरातुल मुस्तकीम। अहले बैत कहते हैं हम सिरात मुस्तकीम है, वो विलायत है, वो रहबरी है, वो हमला जो करता है ना नमाज पे करता, ना रोजे पर करता, ना इसमें करता, हज पे कुछ पे नहीं करता, वो करता है विलायत पे। जब विलायत पे न्यूक्लियस पे हमला हुआ, नमाज भी नहीं, रोजा भी, दुआ करिए मोहम्मद नहीं। देखिए मेरे साथ रहिए बहुत अच्छी तरह से। इमाम खुमैनी कहा था कि हमने प्रोडक्ट को क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। इमाम खुमैनी ने अल्फाज इस्तेमाल मौ इंकलाब और सादिर नहीं बोली, यानी इंकलाब एक प्रोडक्ट है उसको सादिर करेंगे। रिपोर्टर पूछे आका कैसे समझे कि ये प्रोडक्ट है जिसमें शिपमेंट होगा, बड़ी जो है क्रेन आएगी उठाएगी, आगे का सादिर हो गया, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंगल जो है ट्राइंगल। इंजीनियर्स हैं यहाँ पर, आजकल की दुनिया में जितने भी बिल्डिंग्स बन रही हैं ट्राइंगल को बिल्ड करती है। इस्लाम भी ट्राइंगल चलता है। एक मोटिवेशन फैक्टर चाहिए, मैन पावर चाहिए और बजट चाहिए। तो आज बता दें किसी भी मिशन को चलाने के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर चाहिए, मैन पावर चाहिए, बजट चाहिए। जब तक ये तीनों नहीं है उस वक्त तक प्रोडक्ट आगे बढ़ने वाला नहीं है। इस्लाम ने जब ये प्रोडक्ट चलाया तो मोटिवेशन फैक्टर क्या था? सरकार के साथ थी, इमाम अली के साथ, लाहौर पर कहते थे, मैदान में आते थे। बजट किसने दिया? खदीजा ने दिया। मैन पावर किसने दिया? अबू तालिब ने दिया। तो हमला आज भी हो रहा, आज भी ये तीन चीजों की जरूरत है। मोटिवेशन फैक्टर हमारी मजलिसें हैं, बजट हमारा खुम्स है, मैन पावर हमारे मुज्तहिदीन हैं। इसने समझ लिया है सिस्टम को, इन तीनों पे अटैक हो रहा है। मजलिसों पे अटैक शुरू हो गया, खुम्स पे अटैक। तो देखिए दुश्मन कितना होशियार है, हम कितना सो रहे हैं। इसीलिए कुरान कह रहा है पहले शैतान से बचो तो मेरी बात होगी। सब बात इस्लाम का कलमा, इस्लाम का क्रीड गॉड इज वन नहीं है। तवज्जो का तालिब हूं, गॉड इज वन क्रीड नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नो गॉड पहले कहो फिर इल्लल्लाह तक पहुंचोगे। जब तक नफी की मंजिल को नहीं हटाओगे, नेगेटिव फोर्सेस को नहीं हटाओगे, पॉजिटिव एनर्जी तुमको मिलने वाली नहीं है। एक मैदान है गॉड का, इसीलिए एक बार लिखा नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नबिश। कर्बला में ला का सवाल ही नहीं था, हुसैन ने सब हटा दिया था। इसीलिए इस्लाम के हर चीज में आप देखेंगे तीन रुख हैं, मुसलमान, मोमिन, काफिर, मुनाफिक। मोमिन, काफिर, मुनाफिक, बड़ा बेहतर, मोमिन, काफिर, मुनाफिक। इमाम हुसैन ने कहा कर्बला में मैं यहाँ पर दो ही खत छीन रहा हूँ, ये खत लगा रहा हूँ या हुसैनी। कर्बला में कोई निफाक नहीं है, ये समझने की कोशिश करें, या हुसैनी बन जाओ या यजीदी बन जाओ। ये नहीं हो सकता कि यजीदी कैंप में रहकर के हुसैनी कहलाओ, हुसैनी कैंप में रहकर के यजीदी कहलाओ। तो हुसैन ने निफाक के दरवाजे को कर्बला से मोड़ दिया था। तो आज की मजलिस का सबसे अहम जो हमारा किरदार होना चाहिए, निफाक नहीं होना चाहिए। मगर मजलिसें हो रही है, बेनमाजी है, मजलिसें हो रही है, चादर नहीं है, मजलिसें हो रही है, जुल्म हो रहा। इसके माने ये कि मजलिस असली हदफ है। तो इस पर अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा? अटैक हो रहा है। ऐसा अटैक हो रहा है कि आज हमारे पास हिंदुस्तान में मजलिस पढ़ना माशाल्लाह है, कुश्ती लड़ना है। जब तक आप दो चार को बाकायदा कुश्ती लेकर के नहीं पढ़ेंगे मेंबर से, बाकायदा मुनाजरा नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक मजलिस नहीं होगी। हैं ऐसा कैसे मजलिस पढ़ ली उन्होंने, यहाँ कैसा कैसा हुआ भाई? अरे आज के लोग कौन है मुनाजरा? आज के लोगों को पढ़ो यार, सब मिल करके आ जाएंगे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत खूबसूरत दीन है तेरी राह, बेहतरीन सीधी साफ सीधा राह है, अहले बैत का रास्ता ही सिरात मुस्तकीम है। इस राह को समझने की तौफीक नाए फरमा और इस पर चलने की तौफीक नाए फरमा। ले यकूम अन्नास, आप खुलासा करूं, आप तौहीद की बात करेंगे, किसी गोरे से अमेरिकन से उसको समझ में नहीं आएगी, वही कह देगा आई एम एथिस्ट मैन, डोंट टॉक टू मी, दैट्स इट, आई एम एथिस्ट। अच्छा फिर क्या करेगा? मगर एक बहस ऐसी जिसमें वो भी शरीक हो जाएगा वहां। तो जैसा जस्टिस ही एक ऐसी चीज है जिसको हम मैस मोमेंट के तौर पर ले जा सकते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरा जो आखिरी बेटा आएगा यमलौल अर्द इस्तव अदला बादमा मुलियत जुल्म व जौरा, वो दुनिया को अदल व दाद से भरेगा। इस्लाम हो ईमान से नहीं, अदल व दाद। इस्लाम जिक्र तो अदल, अदल खुलासा हुआ कि नहीं? तो करबला भी खुलासा करे तो वही अदल का जस्टिस का खुलासा। क्यों ईमानों से कर ले से जब जानते थे तो गए क्यों? तो यही तो मजा है, जानने के बाद ही मैदान में जाना है। तो जंग के मैदान में बच के आने के लिए जा रहे हो तो भगोड़े हो यार। तो जाना है तो मरने के लिए जाना है, शहीद होने के लिए जाना है। तो मैदान जंग में जो जाता है मरने के लिए जाता है, वो बच के आने के लिए नहीं जाता है। बच जाता है तो मुजाहिद है, मर जाता है तो शहीद है। तो जब जंग के मैदान में इंसान जाता है इसलिए जाता है कि उसकी जान अजीज नहीं है, इस्लाम अजीज है। इमाम हुसैन भी कह रहा है कि मेरा पूरा सब कुछ अजीज नहीं है, मेरा घर अजीज नहीं, मेरा खानदान नहीं है, अजीज है मेरा इस्लाम, मेरी तमाम चीजें देने को तैयार हूं एक इस्लाम को बचाने के लिए। कौन है यह हुसैन? क्या इसके मारे का हमारे पास मौजूद है? क्या चाहते थे हम हुसैन? ज़ियारत अरबईन का टुकड़ा मैंने पहले रोज पढ़ा था, आज इख्तिताम करते हुए पढ़ूंगा। बड़ी जिम्मेदारी मेंबर पे आने की, मेंबर पे बिठाने वालों की, सबकी जिम्मेदारी बड़ी असीम जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी को पूरा करें। बदल मोहजत हो ज्यादा वही टुकड़ा, बदल मोहजत हो, अपने आप का खून पेश कर दिया, अपने वजूद के पेश कर दिया। क्यों? ले यस्तन कद इबाद का अनिल जहादा, तेरे बंदों को जहालत से बिला। अगर करबला में होते भी जहालत अब भी तक चले तो क्या करबला है? इमाम हुसैन के नाम पर जहालत चला फिर भी करबला है, जज्बे के नाम पर करबला चला करबला फिर भी है। अगर जज्बा अकली नहीं है तो जज्बा नहीं है। हमारे जज्बात भी अकली हैं, हमारी अकल भी जज्बाती है। इस्लाम ने यह नहीं सिखाया है कि कोई ऐसा काम करे। तो मैं ज्यादा इसको खोल नहीं सकता, इसलिए कि अभी भी हमारे जहन उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए कि हमको वजअलना फी अअनाकहिम अग्लालन फी हुदूदिल अज़्दाद फहुम मुक़मऊन, जंजीरें डाल दी गई हैं। हमें बताया गया कि टनल विजन, जैसे घोड़े के ब्लाइंड लगा देते हैं रेस में कि ना राइट पे देखे ना देखे, सामने देखते जा भागता जा और जीते। इस्लाम ये कहना ये पूरा निकालो और वाइड निगाह रखो, हर तरफ देखो, ईस्ट को भी देखो वेस्ट को भी देखो, वो राय इख्तियार करो जो तुम्हारे लिए कामयाब रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में उस राह को इख्तियार किया जो राह आजाद है। चला बुझाकर कहता चले जाओ भाई चले जाओ, क्या नाम रख दिया? इसलिए कि ये लोग मेरे खून के पैसे हैं, दे डोंट वांट यू, दे वांट मी। क्या नाम रख दिया? क्या कहना चाह रहे हैं इमाम हुसैन? इमाम हुसैन कहना चाह रहे हैं कि देखो